ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध दूसरा अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, श्लोक संख्या 23। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुच आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरमार्तिमार्च्छत् अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरमार्तिमार्च्छत्। स्कन्दनं सदयितानुजमाविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धरम् आर्तिमार्चत् कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश कलये कलो निदेशे स्कन्दनं सदयितानुजमाविवेश अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठं वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्दिमा। अस्मात् हम सब पर, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक, प्रसाद अहैतुकी कृपा, सुमुखः अत्यंत उन्मुख, कलया अपने पूर्ण अंशों सहित, कलेशः समस्त शक्तियों के स्वामी, इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे, वंशे कुल में अवतीर्य अवतरित होकर गुरो हो पिता अथवा गुरु की निदेशे आज्ञा से तिष्ठन स्थित होकर वनम वन में सदयिता अनुजह अपनी पत्नी तथा अनुज भ्राता सहित आविवेश प्रवेश किया, यस्मिन जिसको विरुद्ध्य विरोध करके दशकंधरः दस सिरों वाले रावण ने आर्तिम महान कष्ट आर्चत प्राप्त किया। भाषांतर तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भाषांतर, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहैतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली दस सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तात्पर्य, भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं, चारों भाई विष्णु तत्व हैं, वे कभी भी सामान्य मानवी नहीं थे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रमाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। कलया, मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो भगवान के ही विस्तार हैं। लक्ष्मी जी सीता रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, वे न तो सामान्य स्त्री हैं और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति का अवतार हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं और वे शिवजी की संगिनी हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र के साथ पूजनीय हैं। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों को आह्वान करता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया, किंतु चूंकि उसने भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र छहों पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी से हम आशीर्वाद की याचना करते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्लोक पर कुछ संयुक्तिक कह पाए। इसके आगे आने वाले तीन श्लोक जो हैं वे भगवान रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करते हैं, बहुत ही संक्षेप में, फास्ट फॉरवर्ड रामायण तीन श्लोकों में। और खास करके भगवान रामचंद्र जी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें तीन जो ग्रंथ हैं, महाभारत रामायण तथा भागवत, इनका अनन्य साधारण ऐसा स्थान है। कभी एक ऐसा ज़माना था जब लोग इन ग्रंथों को छोड़कर दूसरा कोई नॉनसेंस पढ़ते ही नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ते थे, टीवी नहीं देखते थे, और ये जो ग्रंथ हैं इनको केवल नियमित रूप से अध्ययन करने मात्र से व्यक्ति भौतिक जगत, पारिवारिक जीवन, अपने दैनंदिन क्रियाकलाप के जो भी कार्य, आध्यात्मिक जगत, भक्तिमय जीवन, वहाँ के सारे दैनंदिन कार्य, इसके बारे में पूरी पूरी मालूमात कर लेता था केवल इनको अध्ययन करने से। चाणक्य पंडित कहते हैं कि भारतीय लोग कैसे अपना समय बिताते थे। प्रातः समये द्यूत प्रसंगात मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्र्यौ च चौर्य प्रसंगात कालौ गच्छति धीमताम। प्रातः समये द्यूत प्रसंगात, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कालौ गच्छति धीमताम, वो अपना समय कैसे बिताते हैं, तो कहते हैं प्रातः समये द्यूत प्रसंगात, सुबह के समय वो द्यूत क्रीड़ा खेलने में समय देते हैं। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर को स्त्रियों से संग करते हैं। और रात्रियों च चौर्य प्रसंगात, रात को चोरों के साथ संग करते हैं। कालौ गच्छति धीमता, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय बिताते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, पहेली है, वे कहते हैं द्यूत प्रसंग मतलब महाभारत, प्रातः समय द्यूत प्रसंगात, व्यक्ति को सुबह उठने के पश्चात, अभी वो बाहर दुनिया में जाने ही वाला है जूझने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, बाहर दुनिया बहुत खूंखार है, बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता रहता है, लोग एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के कारस्थान करते रहते हैं। तो ऐसे जगत में अगर हमें जाना है और हमारी चेतना को शुद्ध रखना है, फिर भी जो ज़रूरी है उसको करना है, डू द नीडफुल, पूर्ववत बोलते थे, तो उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए, प्रिपरेशन। तो इसलिए प्रातः समय द्योत प्रसंग, सुबह महाभारत पढ़नी चाहिए, खास करके भगवद गीता, क्योंकि वो महाभारत का अर्क है। तो अर्जुन जैसे युद्ध करने से नकार रहा था, वैसे हम भी रोज सुबह सोचते हैं क्या रोज रोज कंपनी जाने का, क्या रोज रोज ऑफिस जाना है। तो किस चेतना में जाना है, जिसके द्वारा हम वहां कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर पाए, कुछ सामाजिक योगदान दे पाए और साथ ही में भगवत चेतना का विकास भी कर पाए। इसलिए गीता खास करके जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गीता जो कर्मयोग सिखाती है, ये तीसरा और पांचवा अध्याय गीता का, वो इतना महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए प्रातः समय द्यूत प्रसंगात, फिर मध्यान्हे स्त्री प्रसंगतः, दोपहर के समय स्त्रियों के साथ संग करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य ने। इसका मतलब क्या है कि जो कैकेयी और मंथरा थी, ये दो स्त्रियां हैं, इनके बीच में जो संवाद हुआ उसके कारण सारी रामायण हुई। तो दोपहर के समय थोड़ा समय निकाल कर व्यक्ति को रामायण का संग करना चाहिए, जिसमें वो स्त्री प्रसंग आता है। वैदिक संस्कृति में 24 घंटा काम नहीं करते थे लोग, 16 घंटा भी नहीं करते थे, 8 घंटा भी नहीं करते थे, वे काम के बीच में ही घर आते थे लंच वगैरह लेने के लिए, या कभी कभी काम में ही थोड़ा समय निकाल कर कुछ पढ़ लेते थे। तो क्या पढ़ना चाहिए, दोपहर को रामायण पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप काम खत्म होने के बाद घर वापस आने वाले हो और आपको परिवार के जनों से संबंध संवारने हैं, तो वहाँ महाभारत लेकर नहीं आते हैं, वहाँ पर रामायण लेकर आते हैं। रामायण में बताए गए हैं आदर्श, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श पत्नी क्या होती है, आदर्श भाई कैसा होता है, पिता कैसे होते हैं, पुत्र कैसा होता है, राजा कैसे होते हैं। तो ये जो आदर्श है रामायण के, ये इतने आदर्श हैं कि हम कभी कभी बोलते हैं कि इतना आदर्श मुझे नहीं जमेगा, व्यावहारिक स्तर पर मुझे नहीं होता है इतना आदर्श पालन करना, लेकिन प्रेरणा जरूर मिलती है उनको देखकर। तो इसीलिए जब हम घर वापस आते हैं तो वहां पर जिस प्रकार से रामायण के जो डीलिंग्स हैं, आदान प्रदान है घर वालों के साथ, वह हमें स्थापित करने चाहिए हमारे व्यवहार के द्वारा घर में। और अंततो गत्वा, रात हो गई, अभी आपका दुनियादारी हो गई और अभी आपका परिवारजनों के साथ भी जो भी आदान प्रदान है खत्म हो गया, अभी आप अकेले हो, अभी सोने ही वाले हो, तो रात्रि उच चौर्य प्रसंगात, रात को चोरों के साथ संग करना चाहिए। चोर कौन है? कृष्णा, उनका वर्णन आता है भागवत में। तो रात को पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवतम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो वर्णन करें ना, चौराग्रगण्य पुरुष, सारे चोरों में उस्ताद, उसके ऊपर अष्टक लिखा गया है। तो ये जो चोर है कृष्ण, वो क्या क्या चोरी करते हैं, और क्या हमें उनको चोरी कर देना करने देना चाहिए, उसका वर्णन इस गीत में है। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो अद्य चोर त्वं भक्ति दाम्नासि माया निरुद्ध। वे कहते हैं मेरे धन मान प्राण इंद्रिय सबको चोरी करके कहाँ भाग रहे हो हे चोर, पलायसे कुत्र कहाँ भाग रहे हो, धृतो अद्य चोर तुमको मैंने पकड़ लिया है। त्वं भक्ति दाम्नासि माया निरुद्ध, मैं अपने भक्ति रूपी दोरी के द्वारा तुमको मेरे हृदय में हृदय रूपी कारागृह में बांध कर रखने वाला हूँ, ऐसे वो कहते हैं। अभी देखता हूँ तुम कैसे भागते हो यहाँ से। तो इतना सुंदर गीत है वो। तो ये रात के समय प्राइवेट टाइम विद गॉड जो भागवत पढ़नी चाहिए, और जब हम इसके बाद सो जाएंगे तो क्या होगा, कृष्णा ड्रीम्स लोग बोलते हैं ना, मैं यू हैव कृष्णा ड्रीम्स, तो रात के समय भगवान के स्वप्न आएंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति की चेतना जो है पूरा दिन भर, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे दिन को या हमारे समय को ऐसे ढालें कि हम कृष्ण को भूल ही नहीं पाए कोई भी गतिविधि करते समय। जैसे गीता में भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो अवरम कर्म अबॉमिनेबल एक्टिविटी वो क्या है जो करना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा अवरम कर्म है भगवान का विस्मरण, भगवान को भूल जाना। तो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग का आचरण करते हुए, बुद्धि योग मतलब साधना भक्ति जिसमें हम बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं मन और इंद्रियों का दमन करने में और उनको भगवत भक्ति में संलग्न करने में। तो इसीलिए उसको भगवत भगवान का जो विस्मरण है उसको दूर रखते हुए हमें हमारे कर्मों को करना चाहिए, मतलब क्या है सतत स्मरण करते हुए कर्मों को करना चाहिए। और इसीलिए ये सारी योजना है प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, उन्होंने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, भागवत दिया है, मंदिर दिए हैं, भक्त दिए हैं, प्रसाद दिया है, सब कुछ, ये किस लिए है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। अंत तो हम गत्वा ये चाहिए नतीजा कि हम लोग इस्कॉन में आने के बाद क्या हुआ कि कृष्ण को विस्मरण कभी नहीं कर रहे हैं और सतत उनका स्मरण हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा तो इतना सारा प्रयोजन करके क्या फायदा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद्गीता के जो उपोद्घात है उसके अंत में कि इतने प्रयास के पश्चात अगर कोई एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाए तो हम हमारा प्रयास सफल मानेंगे। तो भक्त बनना मतलब यही है, पाम अनुस्मर युद्ध च। तो इसीलिए हम दैनंदिन जीवन में शुरुआत करते हैं इन तीन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, महाभारत रामायण और भागवत। रूपा जी ने खास करके हमें भागवत पढ़ने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि महाभारत पढ़ते समय व्यक्ति थोड़े धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्या कहते हैं डिटूर पदभ्रष्ट मार्गों में चला जाए। और रामायण में भी हालांकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनकी लीला इतनी मधुर करुण रस भरी तथा आदर्श है, लेकिन कृष्ण का जो विशेषत्व है वो जो वात्सल्य दास साख्य और माधुर्य रस हर जीव को प्रदान करने के लिए उत्सुक है, ऐसे रामचंद्र नहीं है ना, तो उस रस को कहीं हम ना खो बैठे जो मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा इस कलयुग में। इसीलिए हमें भागवत पढ़ने को कहा गया है। और इन तीन ग्रंथों के साथ हम और एक ग्रंथ ऐड कर सकते हैं, वो है चैतन्य चरितामृत। आप देखिए क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके पास एक ही जीसस क्राइस्ट है भगवान के शुद्ध भक्त का अवतार, और उन्होंने एक कुछ 12-14 साल की या छोटे ही वर्षों की लीला की, ज़्यादा कुछ नहीं, और उन्होंने उसके ऊपर इतने पुस्तक लिखे हैं, इतना उहापोह किया है कि वो पूरा 700 साल पुराना ऑर्गेनाइज रिलीजन खड़ा कर दिए उन्होंने। हमारे पास भक्त कितने पता है हमको वैदिक साहित्य में, भगवान के कितने अवतार मालूम है हमें, और भगवान के बारे में कितने सारे ग्रंथ हमारे पास हैं, लेकिन हम हमारा प्रचार देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते, खुद प्रेरित नहीं होते, तो फिर इच्छा नहीं आती है कि मुझे जाकर बताना ये सब चीज़ लोगों को बाहर। तो इसीलिए ये नियमित जो भागवत कक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो श्लोक है इसमें वर्णन आता है कि अस्मत् प्रसाद सुमुखः, भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों को अपना प्रसाद देने के लिए उन्मुख रहते हैं। जो हम सुबह गाते हैं कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्हिकं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। उसमें कहा गया है कि ये किसने श्लोक गाया है, ये विश्वामित्र मुनि गा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रामायण में जब लक्ष्मण और राम को लेकर विश्वामित्र मुनि जाते हैं, पहले वो दशरथ महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे राक्षसों को मारने के लिए तुम्हारे दो पुत्रों की मदद चाहिए, तो दशरथ महाराज पहले तो हाँ बोल देते हैं, मैं तुम जो मांगोगे दे दूंगा, और जब पता चलता है कि वो इनको मांग रहे हैं तो बोलते हैं नहीं दूंगा अभी। तो विश्वामित्र मुनि जो गुस्सा होते हैं, तो उनके गुस्से को देखकर सारे मंत्री तथा वशिष्ठ मुनि कहते हैं दशरथ महाराज को, कृपया अभी आपने वचन दिया है तो उसको पूरा कीजिए, राम को भेजिए। तो बोलते नहीं, वो मेरा जान ले जाने के समान है, मैं नहीं दूंगा, मैं खुद जाता हूँ, कहते हो उन राक्षसों को मारने के लिए। फिर वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि अगर विश्वामित्र मुनि मांग रहे हैं इसका मतलब उनकी कोई योजना है इसके पीछे, वे स्वयं सक्षम है कि सारे असुरों को मार दें, उनको आपकी भी ज़रूरत नहीं, राम की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो अगर लेकर जाना चाहते हैं इसका मतलब कोई उद्दिष्ट है, तो आपको उनको देना चाहिए राम को। तो जैसे तैसे मान जाते हैं दशरथ। तो रामचंद्र जब जाते हैं वो शरयू को लांग कर जाते हैं अन्य देश में, जहाँ पर उनके आश्रम शुरू होते हैं ऋषि मुनियों के। तो पहली रात जब वो सोते हैं तो विश्वामित्र मुनि के चरण कमल दोनों साइड में बैठकर राम और लक्ष्मण दबा रहे गुरु जी के चरण। तो विश्वामित्र मुनि को अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, उन्होंने इतना सारा झमेला झेला था ये ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए, उस समय उनको इतना आनंद नहीं आया रहेगा जितना आनंद उनको अभी भगवान राम की संगति में आ रहा था। तो वो निरंतर शास्त्र चर्चा कर रहे थे उन दोनों के साथ और उनको सब कुछ सिखा रहे थे, धनुर्विद्या या जो राज्य कारभार करने के तरीके हैं इत्यादि। तो ये जो संवाद होता है गुरु शिष्यों के बीच में वो ऐसे ही होता है कि वो केवल संवाद के द्वारा ही व्यक्ति के साक्षात्कार और आचरण अपने आप ढल जाता है। तो उस समय जब विश्वामित्र सो गए तो राम और लक्ष्मण भी उनके बाजू में योग निद्रा में सो गए। तो जब उठे सुबह विश्वामित्र मुनि तो उन्होंने देखा सुंदर भगवान का विग्रह है उनके साइड में सोया हुआ है, जैसे हम कभी कभी भगवान को उठाने जाते हैं ना अल्टर में। तो उन्होंने जब रामचंद्र को देखा मंदस्मित करते हुए कितने सुंदर सो रहे हैं, तो उनको मन नहीं कर रहा था कि उनको उठाना चाहिए, लेकिन क्या करें प्रातः विधि करने के समय आ गया था। तो उस समय उन्होंने यह श्लोक गाया कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे कौसल्या के सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ पुत्र सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, सूरज उग रहा है, उत्तिष्ठ नरशार्दूल हे नरशार्दूल उठो, कर्तव्यम दैवमान्हिकम और हमारे सारे जो प्रातर्विधि हैं उनको आप शुरू कीजिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, बहुत सरल संस्कृत है, सारे त्रिलोक का आप मंगल कीजिए अपने नेत्र के कटाक्ष के द्वारा, ऐसे विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं। तो ये जो है भगवान रामचंद्र का वर्णन या उनके दिव्य आदान प्रदान जो उन्होंने विश्वामित्र मुनि के साथ किए, इसे कहते हैं सुमुख, कि भगवान जो है वो हमेशा उन्मुख रहते हैं अपने भक्तों के प्रति, प्रेम सेवा तथा आदान प्रदान करने के लिए। तो ये कलया कलेश, कलया का अर्थ होता है उनके जो विस्तार रूप है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और कलेश मतलब स्वयं भगवान जिनके अंदर सारे षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं कहां पर? इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, इक्ष्वाकु महाराज के वंश में अवतार लेकर। फिर उन्होंने आगे क्या किया? गुरोर निदेशे तिष्ठन वनम, गुरोर निदेशे मतलब अपने गुरु, यहां इसका अर्थ होता है अपने पिता दशरथ महाराज, उनके आदेश पर तिष्ठन वनम, वो वन में चले गए। स दयिता अनुजहा, स दयिता मतलब पत्नी और अनुज मतलब छोटे भाई, उनके साथ आविवेश, उन्होंने प्रवेश किया वन के अंदर। वहां पे क्या हुआ? यस्मिन विरुद्ध दशकंधर, वहां पे दशकंधर रावण ने उनका विरोध किया, और भगवान का विरोध करने के कारण उसको क्या प्राप्त हुआ? आर्तिम आर्चत, बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा रावण को। तो इसमें अनेक चीजें हैं। पहली बात, रूपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान के जो विस्तार रूप है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वे सामान्य मानव नहीं, सामान्य जीवात्मा ही नहीं, साथ ही में सीता जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वे स्वयं अंतरंग शक्ति है भगवान की। उसके आगे रूपा जी समझाते हैं कि सीता जी ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी जी हैं, और उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो टिपिकल कोई दुकान होता है उसके अंदर कोई गल्ले पर बैठे रहते हैं साहूकार सेठ जी, तो उनके पीछे एक धनलक्ष्मी का चित्र होता है ना, दोनों हाथों में से कॉइन्स गिर रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स, या गजलक्ष्मी होती है तो वो गज भी एडिशनली अपने सूंड में से यू नो वर्षा कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे लेकिन एक ही गड़बड़ होती है, वो नारायण नहीं होते कहीं भी वो पिक्चर में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मनोवृत्ति है कि लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त सौभाग्य या ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान नारायण में, नारायण की सेवा में उन ऐश्वर्य को लगाने की इच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है? नारायण की शक्ति को लो लेकिन स्वयं की सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसे कहते हैं रावण की नीति, रावण राज। और इसका नतीजा क्या होता है? वही लक्ष्मी जो है वो दुर्गा में परिणत होती है, और दुर्गा क्या करती है? अपने त्रिशूल के द्वारा त्रिविध तापों को बढ़ाती है व्यक्ति के जीवन में। हालांकि उसके पास पैसे रहते हैं लेकिन त्रिविध तापों का जो श्रृंखला है वो कभी रुकता ही नहीं। हम कहते हैं भक्ति में आने के बाद जब हम सारे साधन सामग्री भगवान की सेवा में लगाने लगते हैं तो क्या होता है? क्लेशघ्नि, सारे क्लेश दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका विपरीत होता है कि व्यक्ति धन संपदा जुटाता तो है लेकिन साथ में क्लेशों को भी आवाहन देता है अपने जीवन में। हम देख सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर पैसे वाले लोग जो होते हैं बहुत बार पेट खराब, डायबिटीज और अलग अलग बीमारियां, और कुछ मानसिक स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता है। हालांकि एसी में बैठे हैं लेकिन दिमाग गर्म होता है बहुत इतने सारे टेंशन रहते हैं व्यक्ति को, आध्यात्मिक स्तर पर दुख होता है, आदि भौतिक स्तर पर इतने दुख होते हैं। हम जब जनरली काउंसलिंग करने जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े परिवार के लोग होते हैं लेकिन आपस में इतना झमेला चलता रहता है, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, इतना तकलीफ। और उनके जो बिजनेस राइवल्स, धन क्या कहते हैं उसको, शत्रु होते हैं बिजनेस करते के समय, उनके कारण इतनी तकलीफ, और आगे जाकर अधिदैविक दुख। तो ऐसे जो हैं ये किसका लक्षण है? कि उनके अंदर जो रावण नीति है उसका प्राकट्य होने के कारण ये सारे लक्षण हैं। अगर इसको निकाल देगा कोई व्यक्ति, जैसे अम्बरीश महाराज थे या युधिष्ठिर महाराज थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन आप देखते हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं। ऐसे वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज का जो राज्य था उनके प्रजाजन इतने संतुष्ट थे अम्बरीश महाराज से, हालांकि अम्बरीश महाराज करते क्या थे, उनका राज्य कारभार होता था तो सुबह शाम भागवत कथा ही चलती थी राजदरबार में बैठकर, और अलग अलग ऋषि मुनि आकर या स्वयं अम्बरीश महाराज भी कथन करते थे और लोग सारे बैठकर भगवत कथा सुनते थे। तो कोई पूछेगा अरे मैनेजमेंट कब करते थे ये लोग सारे राज्य का इतना बड़ा, तो कहते हैं कि वो मैनेजमेंट अपने आप हो जाता था, क्योंकि अगर व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना ठीक है तो ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। मैनेजमेंट तब करना पड़ता है जब व्यक्तियों का एजेंडा अलग अलग हो, तब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अम्बरीश महाराज के जो प्रजाजन थे वो इतने आसक्त थे अपने राजा के प्रति कि उनकी इच्छा थी कि हम इनको कभी छोड़े ही नहीं। तो जब अम्बरीश महाराज का भगवत धाम जाने का समय आया तब उनके प्रजाजन भी उनके साथ भगवत धाम चले गए, क्योंकि उनका वो संग छोड़ ही नहीं सकते थे। तो कैसा है राजा, कैसी प्रजा ये हा? तो ऐसे हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपनाना चाहिए कि भगवत भक्ति को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं, प्राधान्य देते हैं, उसके द्वारा बाकी सारी चीज़ें तय होती हैं। जैसे कभी कभी हम परीक्षा आती है एग्ज़ाम, तो भक्त लोग क्या करते हैं, 16 माला करके ही जाते हैं एग्ज़ाम को। कोई बोलेगा अरे 2 घंटा सुबह तुमने गवाया, इतना क्रूशल टाइम था उससे अच्छा तो तुम पेपर अच्छे से देते थे। नहीं, क्योंकि वो भक्तों ने पहले से ही तैयारी अच्छे से की है, और जब एग्ज़ाम का दिन भी आता है उनका तो क्या करते हैं, पहले 16 माला ख़त्म करते हैं फिर जाके पेपर देते हैं, और उनको मार्क उतने ही आते हैं जितने आने हैं या कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं। तो ऐसे क्यों हैं, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं कि हम कितना प्राधान्य देते हैं उनके क्रियाकलापों को, भक्तिमय क्रियाकलापों को। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये जो आयोजन करने की ज़रूरत है वो किस लिए है, मैनेजमेंट वो इसलिए है ताकि हम भगवान का स्मरण बनाए रखें और कभी भी भक्तिमय कार्यों से विलगाव न कर पाए। अंत में कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। अन्यत्र श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, तो बहुत बड़ा श्लोक है और उसका विस्तार वर्णन भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसमें से एक ही बात रामचंद्र भगवान के बारे में बताएंगे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मीम धर्मिष्ट आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितमिप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये एक ही श्लोक है जिसमें कृष्ण का, राम का और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है एक ही श्लोक के अंतर्गत, लेकिन इसमें से हम केवल रामचंद्र भगवान का वर्णन देखेंगे। वे कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, अयोध्या का राज्य जो था सुर इप्सित देवताओं के द्वारा भी वांछित था, ऐसी नगरी थी वो। अयोध्या का अर्थ क्या होता है, जिसको युद्ध करके जीता नहीं जा सकता, उसको कहते हैं अयोध्या, अनकॉन्करेबल। तो ऐसा राज्य था सुर इप्सित राज्य लक्ष्मी, ऐसे राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज जो छोड़ने के लिए बहुत कठिन है, और धर्मिष्ठ भगवान रामचंद्र जो थे वो धर्मिष्ठ थे, आर्यवचसा मतलब अपने पिता के कहने पर यद अगाध अरण्यम वो वन में चले गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, माया मृगम दयित इप्सित मन्व धावत, वहाँ पे एक माया मृग आया मारिच और उन्होंने उसका पीछा किया अन्व धावत। वो जो मारिच के पीछे दौड़ने वाले भगवान रामचंद्र के चरण कमल हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उन चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ, ऐसे श्लोक में कहा है। तो यही जो श्लोक है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी वर्णन होता है कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। चैतन्य महाप्रभु की अवस्था कैसे थी नवद्वीप में जब वो रह रहे थे, उनकी माता शची और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया ये इतना प्रेम करते थे उनसे, और उनका जो पारिवारिक जीवन था उसका लोभ किसी को भी हो जाए कि ऐसा गृहस्थ जीवन मुझे चाहिए, तो ऐसे लक्ष्मी को छोड़कर, विष्णुप्रिया को छोड़कर, सची माता को छोड़कर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो धर्मिष्ठ हैं, धर्म का प्रचार करने वाले हैं, वे भी एक आर्य वचसा, एक ब्राह्मण के कहने पर अपने परिवार जीवन को छोड़ दिए और संन्यास ग्रहण कर लिए। वो ब्राह्मण कौन थे कि उनको द्वेष होता था चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्धि के कारण, तो उन्होंने एक बार अपने जनेऊ को तोड़कर उनको शाप दिया कि तुम कभी भी पारिवारिक जीवन का भोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में कभी भौतिक सुख नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहा बहुत धन्यवाद यही हमको वर चाहिए था कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे, भौतिक जीवन को छुए ही नहीं। तो उसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। यद अगाध अरण्यम, और वो अरण्य में चले गए। कौन से अरण्य में? पूरा जो भारत भूमि की यात्रा की वो सारे अरण्यों में ही हुई, झारखंड फॉरेस्ट से लेकर वृंदावन और बहुत सारे अरण्यों में चैतन्य महाप्रभु गए। किस लिए गए? माया मृगम दयितम इप्सितम अन्वधावत। माया मृग, माया का अर्थ होता है जो केवल मायिक चीजों में लगे हुए लोग हैं, उनको माया का मृग मतलब पपेट इन द हैंड्स ऑफ माया ऐसे बोला गया। ऐसे जो जीवात्मा है जो माया के ही जंजाल में फंसे हुए रहते हैं हमेशा, उनके पीछे दौड़ने के लिए और उनको भौतिक जीवन में से निकाल कर भक्ति रसामृत सिंधु में फेंकने के लिए, ऐसे वो तात्पर्य में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु दौड़ दौड़ कर गए उनके पीछे। माया मृगम दयितम इप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे प्रचार करते प्रचार करते करते घूमने वाले चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल है उनको मैं वंदन करता हूँ। तो हमारा ये वास्तविक सौभाग्य है कि ऐसे महात्मा जो भगवान के अवतार तथा भगवान के भक्त, इनके संप्रदाय में हमें एक मौका मिला है जुड़ने का, और हमें ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि हमारा क्या भाग्य है। अगर हम इस भाग्य को वारंवार समझते नहीं हैं तो जो भी हो रहा है उसको बहुत चीपली लेते हैं। चीपली को क्या कहते हैं? सस्ता लेते हैं। क्या है रोज मंगल आरती, क्या है रोज भागवत क्लास, क्या है रोज वही डिवोटी सामने बैठ के मच्छर मारते हुए जप करते रहते। मारते नहीं है, भगाते हुए तो हमें ऐसा लगने लग सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम जानेंगे कि हमें क्या मिला है और हमारा क्या भाग्य है इसके द्वारा, तो हम कभी भी ऐसे व्हाट डू यू कॉल कॉम्प्लेसेंट, ढीले नहीं बनेंगे, ढीले ढाले, और हमें हमेशा स्फूर्ति प्राप्त होती रहेगी यहाँ कहाँ जहाँ कहाँ से भी, जहाँ कहीं कृष्ण भावना में स्फूर्ति की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ ग्लांस करो वहाँ स्फूर्ति मिलेगी आपको, या जहाँ कुछ सुनने को पड़े उससे स्फूर्ति मिलेगी। लेकिन केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण भावनावित बनना है, और उसके द्वारा यह संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?
अभी आपने चाणक्य पंडित का बताया, उन्होंने सवेरे मतलब ऐसा बोले से डायरेक्टली वो क्यों नहीं बोलते कि सवेरे महाभारत करो, दोपहर में रामायण करो, शाम को।
इनका प्रश्न है चाणक्य पंडित ऐसे क्यों बोलते हैं, सीधा बोलना चाहिए ना, क्या करना चाहिए व्यक्ति को। क्या है वैदिक सभ्यता में दो चीजें, एक तो लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे कि वो मतितार्थों को बहुत जल्दी समझ जाते थे और सुपरफिशियली चीज़ों को नहीं लेते थे। अभी हमारा हालत ऐसी है कि हम गर्भित अर्थ समझ ही नहीं पाते, हमको पैकेज में ही सब कुछ देना पड़ता है, अंदर का सब्सटेंस बाहर निकाल कर तभी वो व्यक्ति स्वीकार करते हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो स्कॉलर्स होते हैं वो कभी कभी ऐसे पहेलियों को लिखते हैं, जैसे व्यासदेव ने भी महाभारत में इतने सारे डाले हैं, ऐसे क्या कहते हैं उसको, हाँ कूट श्लोक, कि अगर वो सुलझाने बैठे व्यक्ति तो ना केवल कृष्ण भावना भावित हो, उसके बुद्धि में बहुत वृद्धि होगी। तो एक पहला कारण है कि जो विद्वत जन होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। प्रभुपाद जी को देखिए आप, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कभी कभी, सो यू आर ईटिंग दिस सिंपली वंडरफुल, बिकॉज ऑफ दैट योर लाइफ हैज बिकम सिंपली वंडरफुल, एंड दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपली वंडरफुल, एंड इफ यू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट विल बी सिंपली वंडरफुल। तो एक ही शब्द है वो, उसको प्रभुपाद जी बारों बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते। सिंपली वंडरफुल मतलब संदेश, उसको इस्कॉन में सिंपली वंडरफुल बोलते हैं। ऐसे इस्कॉन में पाश्चात्य लोगों ने दिया हुआ नाम है उसका, संदेश का। तो ये हुआ पहला कि जो इंटेलिजेंट पीपल आर वेरी विटी, दे आर नॉट नॉर्मल इन देयर थिंकिंग प्रोसेस, दे आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर पैरानॉर्मल। दे आर लाइक, ऐसा विचार रहता है उनका कि व्यक्ति सोचे वाह क्या क्या सोचने की क्षमता है इस व्यक्ति की। दूसरा है कारण कि चाणक्य पंडित हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं उसके महत्व की ओर। जब किसी चीज की ओर हम ध्यान खींचना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे व्यंग्य करते हैं और चीज करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे कभी कभी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जानबूझकर ऐसे कुछ विचित्र व्यक्तित्व या क्रियाकलाप दिखाते हैं, फिर उसके एंड में जाके वो प्रोडक्ट आता है कि ये खरीदो। अच्छा, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसीलिए दूसरा कारण है कि वो ऐसे क्यों लिखते हैं वैदिक साहित्य में। अभी इसके बाद और भी बहुत सारे कारण होंगे लेकिन वो चाणक्य पंडित से पूछने पड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।